देखते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर आयत 153 से सूरतुल बकरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, तुम मदद मांगो सबर के जरिए और नमाज के। अभी तक पिछले सबक में हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने ये पढ़ा था कि उम्मत मुस्लिमा को अब चुन लिया गया है अल्लाह ताला के दीन की गवाही देने के लिए पूरी इंसानियत के सामने। यानी अब ये उम्मत वो काम करेगी जो अंबिया का काम होता है। क्या अंबिया का काम आसान था? जितने अंबिया उठा के देख लें, उनका काम कितना टफ था, कितनी मुश्किलात थी, कितने मसाइब थे। उससे पहले जब उनको नबुवत मिलती थी, उससे पहले वो कौम के एक अच्छे भले फर्द की हैसियत से रह रहे होते हैं, लेकिन जब उनको नबुवत मिलती तो उसके बाद क्या कौम उनके साथ सलूक करती थी। आप देख लें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आप शुएब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें। उनके लिए तो उनकी कौम कहती थी, हमें तो तुम्हारे से बड़ी उम्मीदें थी कि तुम तो बड़े हमारे लिए बड़े अच्छे साबित होगे, बड़े इंटेलिजेंट हो, और तुम क्या निकले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, जब तक उन्होंने कोई तबलीग नहीं की तब तक सब ठीक था। जब उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत देनी शुरू की तो फिर आग में भी डालने के लिए लोग तैयार हो गए थे और फिर मुल्क से भी निकाल दिया था। तो यानी अंबिया की जिंदगियों में आप देखें कि मसाइब कब आए, जब उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत देनी शुरू की। ये आसान काम नहीं होता। अब जब उम्मत मुस्लिमा को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि देखो अब तुम हो उम्मत चुनी हुई अल्लाह की तरफ से, तुम शहादत दोगी, ठीक है, तुम गवाह बनोगी अपने अमल से भी अपनी जुबान से भी, तो फिर क्या होगा, मुश्किलें आएंगी। तो अब क्या करें फिर उन मुश्किलात में, कैसे इनसे निपटा जाए, कहाँ से मदद आएगी। तो अल्लाह ताला ने उसका नुस्खा बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम ए ईमान वालो, किस चीज से मदद हासिल करो, तुम मदद हासिल करो किससे, बिस्सब्री वस्सलाह, सबर से और सलाह से। ये दो टूल्स अल्लाह ताला ने दे दिए कि इनके जरिए तुम मदद हासिल करो। किस चीज के लिए मदद, किसी चीज के लिए चाहिए ना, टूल तो आपके हाथ में आ गया कि इससे काम करना है। ये दो हथियार है मेरे पास, ये दो चीजें हैं जो मुझे इस मिशन के लिए काम आएंगी। कौन से मिशन के लिए, अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए दुनिया, ठीक है। और क्या है पहली चीज, सब्र। देखें जहां पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में तसल्लियां दी गई तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सब्र करें या नबी, आप सब्र कीजिए, आप बर्दाश्त करें, आप चलते जाएं। कहीं पे अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं हुआ कि अभी कौम ने कोई काम किया और फौरन उनके ऊपर कोई मसले आके खड़े हो गए और कुछ। अल्लाह ताला अपने नबी से ही कहते रहे कि नबी आपको सब्र करना होगा। एक जगह पे आता है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनआम में आयत नंबर 34 है, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, ए नबी आपसे जो पहले रसूल आए थे ना उनको भी झुटलाया गया, तो उन्होंने क्या किया, فَصَبَرُوا, उन्होंने सबर किया, عَلَامَ كُذِّبَ وَأُوذُوا, इस पर के वो झुटलाए गए और अजियतें दिए गए, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, सबर। हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि आ गई हमारी मदद। वला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, ऐसा ही होगा। लेकिन अल्लाह की मदद एकदम से फौरन ऐसे नहीं आ जाती, अभी पता चलेगा अल्लाह की मदद किन के साथ आती है। आप पहले सबर करते हैं तो तब अल्लाह की मदद आती है। तो सबर क्या चीज है, कैसे सबर किया जाना चाहिए। सबर बर्दाश्त करना, हाय वाय वावेले ना करना, दुहाइयां ना देना शुरू करना। सबर वो स्ट्रेंथ है जिसके जरिए आप मसलों को फेस करते हैं। ये नहीं कि फौरन बस गिव अप कर दें, भाग जाए उसे, ये सबर नहीं है। बस जरा सा काम मुश्किल देखा, हमसे तो नहीं होता, ये बेसब्री है, ठीक है। कई चीजों को हम उनके ऑपोजिट से पहचानते हैं, क्योंकि जब कहा जाएगा सबर करो, अब पता ही नहीं सबर कैसे करना, तो फिर क्या करेंगे। जिस मनसब के ऊपर, जिस ओहदे के ऊपर आपको फाइज किया जा रहा है ना, आपको जो ये पोजीशन दी जा रही है उम्मत मुस्लिमा, इसके लिए बड़ा अपने आप को ऐसे पोजीशन में लाना पड़ेगा कि आप बर्दाश्त करें चीजों को। बड़ी चीजें आएंगी रास्ते में, इस दावत के मिशन में बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो आपके ऊपर बड़ी मुश्किल गुजरेंगी। कभी कोई कोई बात कह देगा, कभी कुछ सुना देगा, कभी कोई हंसेगा, कभी कोई बातें बनाएगा, कभी वो तेज नजरों से देखेगा, कभी तंज के तीर बरसाएगा, कभी हो सकता है कि कोई फिजिकली भी कोई गजन पहुंचाने की कोशिश करे। तो उस वक्त में क्या करेंगे? हमसे नहीं ये काम होता, हम तो भाग रहे हैं, हमसे नहीं बातें सुनी जाती, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये नहीं करना, सबर। सबर का मतलब होता है जम जाना। आप जमे रहें, आप चलते रहें, आंधियां तूफान आएंगी, आपने पीछे नहीं हट जाना, उस वक्त अपने आप को जमा के रखना। इस्ताईनु फरमाया ना, मदद हासिल करो। मदद मतलब किस चीज के लिए, किस चीज के लिए तो पता चल गया, किसकी मदद हासिल करो? अल्लाह की। अल्लाह की मदद यानी कैसे मिलेगी? सबर से और नमाज से। यानी तुम अगर चाहते हो ना कि मैं क्वालिफाई करूं, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए भी कुछ चीजें जरूरी हैं, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, तब अल्लाह की मदद आती है। वो क्वालिफिकेशन क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबर और सलाम। जो लोग कम हिम्मत होंगे, भाग जाएंगे, हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते, उनके साथ ही फिर मदद आएगी। फिर वो क्या मदद आएगी, वो तो भाग ही गए। तो ये रास्ता कोई फूलों की सेज तो है नहीं, कदम कदम पे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, कुछ माल भी लगाना पड़ेगा, जाने भी खपानी पड़ेंगी, टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी सलाहियतें भी लगानी पड़ेंगी। ये भी कौन कर सकता है? इसमें सबर होना। और जब सबर नहीं है तो हमसे तो नहीं होता, हम तो नहीं अपना टाइम दे सकते, हम तो नहीं अपना माल लगा सकते, वो क्या करेंगे? तो ये भी सबर है, सिर्फ जम जाने नहीं, ये भी सबर है कि कुर्बानी देने का हौसला भी उसका होता है जिसमें सबर हो। तो जो लोग सबर वाले हों, ढीले नहीं, कम अजम नहीं, उनके साथ अल्लाह की ताईद आएगी। फिर सबर ये भी है, अल्लाह की रजा पे राजी रहना, ये भी सबर है। तो इस रास्ते के अंदर सबर करना होगा। और लेकिन पहले हमें क्या बताया गया, वस्ताइनु बिसबरी वस्सला, ये पहले आया ना पिछले पारे में भी, वा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुशू वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, आजी करने वालों के लिए ये आसान है। तो जब बनी इसराइल को भी मनसब दिया गया था ना, तो उनको भी यही इंस्ट्रक्शन दी गई थी। आप पढ़ लें पिछले पारे में जहां पे बनी इसराइल की बातें शुरू हुई हैं, उनको भी यही कहा गया था, सबर और सलाह। और हमें भी यही कहा जा रहा है, ठीक है? तो अच्छा, अब ये जो सबर है ना, ये तीन चीजों का नाम है, तीन जगहों पे होता है, या तीन अकसाम कह लें। एक है सबर इताअत पे, कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में जम जाना, जब अल्लाह ताला को हुक्म आया ना, इसको करते रहना, चलते रहना उस रास्ते पे, छोड़ के भाग नहीं जाना, ये सबर है। कोई भी नेकी का काम है, क्या वो मुश्किल लग रहा है? अब वो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, दिल नहीं चाह रहा, करते रहना, कंटिन्यू करना उसको, ये सबर है। मतलब नमाज का दिल नहीं चाहता, नहीं उठा जा रहा सुबह, फिर भी आप उठे, क्लास में बैठने का नहीं दिल चाह रहा, मैं थकी हुई हूं, मेरे से ये नहीं हो रहा, सबर चाहिए इसके लिए। सबर के साथ बैठे रहे, जमे रहे। ये जो भगौड़े लोग होते हैं ना, ये कुछ नहीं हासिल कर सकते। इधर आए, इधर से 4 दिन सुना, ओ फिर भाग गए, उधर गए, फिर उधर 4 दिन बैठे, फिर भाग गए। इसका मतलब है इनके अंदर सबर नहीं है। सबर भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो किसी को हासिल हो जाए। तो ये सबर किस पे? इताहत पे। बाज लोग इताहत के काम जोश में आके शुरू तो कर लेते हैं, जमते नहीं है। और वजह क्या होती? सबर नहीं है ना, बस जोश जोश में किया, शौक शौक में शुरू किया, उसके बाद आप उनको कुछ महीनों बाद देखें, फिर सब कुछ उतार फेंका और सब वैसे का वैसे फिर शुरू हो गए, जो जिन कामों में पहले पड़े हुए थे उन्हीं में वापस चले गए। क्योंकि देखें, अल्लाह की इताअत ना, इसके लिए सबर रिक्वायर्ड है, अल्लाह की इताअत ऐसे नहीं होती। और 4 दिन काम करना ये तो बड़ा आसान होता है, पता तो तब चलता है इंसान मरते दम तक अल्लाह की इताअत पे कायम रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबर। आप भी सबर वालों में से हो सकते हैं अगर आप अल्लाह की हुक्मों के ऊपर चलते रहे। आपको मुश्किल लग रहा है, नहीं नहीं मैंने अपने आप को चलाना है इसके पास, मैंने इस पे रखना है खुद को, अंदर अंदर से दिल जो है ना तंग पड़ रहा है, बोर हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, नहीं मैंने करना है ये है सबर। ठीक है, मैं इसलिए आपको इतनी डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाद हम सबर सबर पढ़ लेते हैं, पता नहीं हमारे दिमाग में सबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ और ही चीज समझे होते हैं सबर को, या पता ही नहीं होता सबर क्या है। तो ये 3 ही हरूफ मगर बहुत बड़ा समंदर है इनमें, पूरी जिंदगी पे हावी है ये सबर। दूसरा सबर क्या है? मासीयत पे, गुनाहों पे सबर करना। वो कैसा सबर होता है गुनाहों पे सबर करना? यानी आपका दिल चाहता है कोई काम करने को लेकिन अल्लाह ताला ने उससे मना किया हुआ, तो अब आप अपने आप को जो रोकते हैं ना, ये सबर है। आप अपने आप को कहते नहीं मैंने ये नहीं करना, इसमें नहीं जाना, आपको हराम का मौका मिलता है, हराम कमाई के अंदर बहुत पैसा है, आपने अपने आप को रोक लिया, नहीं मैं हम नहीं कर सकते, ये सबर। आपको पता चलता है कि झूठ बोल के यहाँ पे आप बहुत पैसे बना सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉड करके बड़े आराम से निकल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? और ये वाला जो काम है ना, ये तो इस सारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बल्कि लोग तो उसको ज्यादा मॉडर्न और अच्छा समझते हैं और अप टू डेट समझते हैं, जो ये वाला काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मना किया, आप उससे बाज रहते हैं। मसलन नंगे फिरना, आप नंगे पूरा बहाना नहीं मगर आप समझ सकते हैं कि किस तरह, मिसाल के तौर पे, और कोई बेहयाई के काम है करना वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, कोई नहीं कुछ कहता, कोई आपको ऑड नहीं समझेगा, कोई आपको मना भी नहीं करेगा, कोई आपको बुरा नहीं जानेगा, लेकिन आप क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ने मना किया। और फिर इस पे जमे रहना, इसी हमेशा अपने आप को बचाते रहना, ये है सबर। ठीक है, मरते दम तक उन कामों से दूर रहना, ये सबर है। ठीक है, ये 2 हो गई बातें। नंबर 3 बात क्या है? रंज और गम और मुसीबत और परेशानी के वक्त के अंदर अपने आप को संभाल के रखना, यानी अपने जज्बात को काबू में रखना, अपने रिएक्शंस को काबू में रखना, ये है सबर। समझ आई बात? यानी अब फौरन रिएक्शनरी ना हो जाना, फौरन एकदम से उसके ऊपर वावेला ना खड़ा कर देना। इसके ऊपर जरूरी नहीं होती कि हर चीज के ऊपर हम फौरन बताएं कि ये चीज ऐसे और ऐसे, तो नफ्स को जो रोकना है ना, जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त कर लेना, वो है सबर। लोगों को अजियत देने से, अपने आप को इंतकाम लेने से रोक लेना, आप इंतकाम ले सकते हैं लेकिन आपने अपने आप को रोक दिया। शिकवा शिकायत करने से खुद को रोकना, अल्लाह से मायूस होने से खुद को रोकना, ये सब सबर है। ठीक है, अब इस के तनाजुर में हम अपने आपको देख सकते हैं कि सबर क्या चीज है। जब कोई मुश्किल हमारे ऊपर आती है, कोई मसला आता है, तो फिर हमारा क्या रवैया होता है? क्या हम अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, या क्या करते हैं? देखिए एक बात याद रखें, जब भी सबर की बात आती है ना, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में आता है, शायद सुन सुन के, कि सबर का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी को फौत हो जाता है तो फिर जाके उसको कहते हैं सबर करो, तो ये सबर है। इससे तो आपने बहुत ही इसको लिमिटेड कर दिया, किसी का मरना जीना ये तो लिमिटेड बात हो गई ना। कोई भी परेशानी, कोई भी गम, उसमें इंसान एक पीटना ना शुरू कर दे, चीखना ना शुरू कर दे, दीवारों में सर ना मारे, हाल दुहाइयां ना शुरू कर दे, कपड़े ना फाड़ने लगे, ये फिर उस टाइम का सबर है। आपने तीन चीजों में सबर देख लिया ना, अब सबर वाले जो होते हैं ना, इनके लिए बगैर हिसाब किताब के है जन्नत में आपको इंशाल्लाह। ये हदीस बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर करने वालों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए खुशखबरियां ऐसे ही नहीं मिल जाती, उन्हीं कामों पे खुशखबरी है। जितना मुश्किल काम होता है ना उतनी बड़ी खुशखबरी है, जितना मुश्किल काम। अब जाहिर है देखिए ना, अब जो बंदा पीएचडी करता है उसका मुताबिक उसकी डिग्री है, जो फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ है उसको वो तो नहीं मिल जाएगा जो पीएचडी कर। सबर बहुत मुश्किल काम है, इन्नाला कबीर और तुम, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा काम है। हम कहते हैं ना अब बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल कह के वहीं बैठ जाते हैं, यानी हमसे नहीं होता ये। जो मुश्किल है तो मुश्किलें पे ही तो बड़े अजर हैं, और क्या मुफ्त ही मिल जाएगी जन्नत? अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ए तुम क्या ऐसे ही समझते हो कि हम ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह ताला ने तो अभी देखा ही नहीं कि तुमने तो सबर करने वाले कौन से। अभी तो अल्लाह पहले देखेगा ना सबर करने वाले कौन है, फिर ही जन्नत में जा सकते। और जिन्होंने यहाँ पे सबर ही ना किया, छोटी छोटी बातों पे उन्होंने दुआइयां मचा दी, वो कैसे जाएंगे जन्नत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया सबर करने वालों का अजर, कि कयामत के दिन एक आदमी ने एक मुनादी निदा देगा, यानी एक पुकारने वाला पुकारेगा। सबर करने वाले कहाँ हैं? उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे, फरिश्ते उनको देख के पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहेंगे जन्नत में। वो कहेंगे अभी तो हिसाब किताब ही नहीं शुरू हुआ। कहेंगे हाँ हम हिसाब से भी पहले जा रहे हैं। वो पूछेंगे क्यों, आप कौन लोग हैं? वो जवाब देंगे हम सबर करने वाले हैं, हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते रहे, यानी मरते दम तक उसकी नाफरमानी से बचते रहे, मरते दम तक इस पर रहे, सबर किया, इस पे जमे रहे। फरिश्ते कहेंगे फिर तो ठीक है, फिर बेशक आपका बदला यही है, आप इसी लायक हैं कि जाएं जन्नत में और मजे करें। देखा नेमा अजरुल आमिलीन, इतना अच्छा बदला है अमल करने वालों का ना। तो सबर ये चीज होती, इतना एक मुश्किल काम है, माना मुश्किल काम है, लेकिन फिर उसके बाद इसका अजर भी तो देखें। जब लोग परेशानी के अंदर बैठे होंगे, हिसाब किताब देने में मशगूल होंगे, ये बगैर हिसाब किताब के ही चले जाएंगे, तो तुम सबर करोगे ना तो अल्लाह की हेल्प आएगी तुम्हारे लिए। और सलाह नमाज, बाज ने कहा है कि सबर की ही तफसीर है नमाज, यानी सबर यानी नमाज, बेसब्री सबर के जरिए यानी नमाज के जरिए। बाद में वो का माना अतफ का नहीं लिया, और का नहीं लिया, बल्कि यानी का लिया है ना। और बाद ने कहा नहीं सलाह अलग चीज है, तो ठीक है दोनों तरह से देखते हैं हम इसको। सलाह से कैसे अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी? इसलिए कि नमाज में क्या होता है, इंसान हर तरफ से कट के सिर्फ एक अल्लाह की तरफ ध्यान कर लेता है, ऐसा ही है ना। अब हम अपनी ना नमाजें देखें, असल तो जो नमाज सही नमाज अगर पढ़े तो उसमें तो ऐसा ही है, हर तरफ से इंसान कट जाता है। अब अल्लाह अकबर कर देता है तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो बातें कर रहा है, अल्लाह को सुना रहा है, और अल्लाह ताला से बात करके वो अपने आप को हल्का करता है, अल्लाह को अपना दुखड़ा कह देता है। तो सलाह भी जो है वो भी, अगर सबर का को सलाह से देखा जाए तो सलाह भी सबर ही सिखाती है। जो सलाह में भी देखे ना, आप अपने सारे काम छोड़ के और अल्लाह के आगे खड़े होने के लिए आ गए, फिर आपने सारी दुनिया से कट ऑफ करके एक अल्लाह की तरफ ध्यान लगा लिया, आप ना उस वक्त खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं, बस तो नमाज में खड़े हैं। तो नमाज भी सबर सिखाती है इंसान को, और नमाज में आपका कनेक्शन किससे जुड़ गया? अल्लाह से। तो अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या चीज है? सौला। तो सबर करो और सौला, ये दो चीजें आएंगी तो अल्लाह की हेल्प आएगी। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह की मदद मुझे मिले? तो बस ये दो काम करनी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल आई है ना, कितनी उनकी जिंदगी में मुश्किल आती, तो नमाज की तरफ दौड़ते थे। वो नमाज जिसमें खुशू हो, जिसमें तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, वाकई वो फिर सुकून ही देगी ना। कभी हम दो नफल चलो ऐसे पढ़ के देखें, अल्लाह ताला को पता है कि हम पूरा पूरा 100% फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो हमारी कोशिश होती है ना सारा टाइम, ये कि अपने आप को खींचना इस तरफ से और अल्लाह की तरफ ध्यान, फिर कोई ख्याल आ गया फिर उधर से खींचना अपने आप को अल्लाह की तरफ लगाना, इसी का तो रिवॉर्ड है, इस पे अल्लाह ताला नवाजेगा कि ये बंदा कितनी स्ट्रगल कर रहा है। ये वसवास आते हैं, शैतान भी पीछे पड़ जाता है, नमाज में तो इतना सताता है, इतने ख्याल आते हैं, कोई भूला हुआ काम हो वो नमाज में याद आ जाए, तो वो टाइम उस वक्त ख्याल आना वो आपके बस में नहीं है, लेकिन ख्याल में महव हो जाना ये बस में है, ये आपका बस है कि आप उसमें महव हो जाए या अपने आप को उससे अलग कर। अब ख्याल आया, अब आपने फौरन अपने आप को उससे जुदा किया, यानी फिर आपने कहा नहीं मैं तो नमाज पढ़ी, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाया कि मैं बोल क्या रही हूं। तो नमाज में इंसान अपना फोकस अपना ध्यान अल्लाह ताला की तरफ करके और फिर उससे भी अल्लाह की मदद हासिल कर सकता है, यानी अल्लाह की मदद आएगी तब। जब हमें अल्लाह की मदद चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उधर फोन करते हैं, इधर करते हैं, उसको बताया, इसको कहा, और जो ये दो काम है ये करते ही नहीं। तो किसी भी मामले में, सिर्फ इस मामले में नहीं, जहां पे भी अल्लाह की मदद आए तो मदद चाहिए हो तो ये नुस्खा है इसका। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया इन्ना अल्लाह मअस्साबिरीन, सबर करने वालों के साथ है अल्लाह। जैसे आपको कोई कह देता है ना कि देखें आप फिक्र ना करिएगा मैं जो आपके साथ हूं, अब वो पता नहीं वो जब मुश्किल आए वो पता नहीं हो भी कि नहीं हो, देखो ये तो इंसानों की बातें हैं ना, वो या वो ऊपर ऊपर से कह रहा है या वाकई दिल से कह रहा है कोई पता नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा देना इन्ना अल्लाह मअस्साबिरीन तो अल्लाह वाकई है फिर सबर वालों के साथ। जब सबर करें तो सोचे अल्लाह मेरे साथ, ये चीज आपको कभी करेगी ताकतवर बनाएगी, ठीक है। फिर अगली चीज आप देखें, जब शहादत हक की गवाही, यानी ये काम दावत का करना है, शहादत देनी है अपने कौल से अपने अमल से और पूरी दुनिया तक ये काम पहुंचाना है, तो उस दौरान कभी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ जाती है। तो उसके लिए कहा गया वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और ना तुम कहो लिमन युक्तलु जो कत्ल कर दिया जाए। अभी तो स्टार्ट ही था ना, तो अभी तो कोई ऐसा नहीं मरहला आया था, मुसलमानों को तैयार किया जा रहा है कि ऐसे भी स्टेजेस आएंगे जहां पे जान भी चली जाएगी, और शहीद को शहीद इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी जान दे के ये साबित करता है, वो गवाही देता है, शहादत देता है, गवाही देता है किस चीज की, कि जो मैंने कहा था वो हक है, मैं उसके ऊपर इस तरह ईमान रखता हूं, मैंने उसके लिए अपनी जान भी दे दी, शहादत हक, यानी अपना खून दे के भी वो ये साबित करता है कि अल्लाह एक है, जो मैंने कहा था देखो मैं उसको प्रूव करके दिखाया, उसके लिए मुझे जान भी जाए तो जाए। तो उन ऐसे लोगों को जो फी सबीलिल्लाह कत्ल कर दिए जाए। अब देखिए एक शहादत होती है जो पेट में यानी बीमारी हो जाए तो उससे भी शहीद होता है, डूब के मरने वाला भी शहीद होता है, लेकिन यहां पे खास तौर पे किसका कहा जा रहा है, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, और ये हर एक के लिए नहीं कोई कहा जा सकता कि ये अल्लाह के रास्ते की शहादत है, इसलिए कि अल्लाह के रास्ते का शहीद सिर्फ और सिर्फ वो है जो कि अल्लाह ताला के दीन की खातिर लड़ते हुए दुनिया से गया, वो है सिर्फ जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है, जो फी सबीलिल्लाह कत्ल किया जाए। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बद्दू आया, उसने कहा या रसूलल्लाह एक आदमी माले गनीमत की खातिर लड़ता है, मसलन है कि जैसे हमें सैलरी मिल रही है या हमें कोई और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी पे, या जाहिर हमें सैलरी मिल ही रही है तो अभी हमें लड़ना ही है,
एक शख्स नामवरी के लिए लड़ता है, यानी मेरा नाम हो जाए, मुझे ये तमगा मिल जाए, ये टाइटल मिल जाए। हर जगह की होती है ना कि किसी फौज के लिए कोई टाइटल होता है, कोई कहीं जैसे हमारे हाँ निशाने हैदर है, तो इस तरह के बड़े बड़े टाइटल्स भी हैं और वो उसके लिए लड़ता है। एक शख्स इजहारे शुजात के लिए लड़ता है कि मेरी बहादुरी मानी जाए, मैं कितना बहादुर हूँ, मेरी कहानियां कही जाए, लोग इसके किस्से कहें। तो इनमें से अल्लाह के लिए लड़ने वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इनमें से कोई भी नहीं। जो शख्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता है वही अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। क्योंकि आजकल तो हर एक कोई शहीद कह देते हैं ना, फलां भी शहीद है, फलां भी शहीद है, कोई जैसा मर्जी हो कहते बस ये शहीद है। हर एक नहीं शहीद है, फी सबील अल्लाह शहीद सिर्फ वो है जो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए लड़ता है। एक आदमी ने पूछा, या रसूल्लाह एक शख्स दुनिया को हासिल करने के लिए लड़ने का इरादा करता है, आपने फरमाया उसके लिए कोई अजर नहीं, यानी मुल्कों पे कब्जे करना ऑयल के लिए या किसी और के लिए उनके चीजों के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर अजर मिलेगा उसको। तो फरमाया अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ऑनर दिया, क्योंकि इंसान मौत से घबराता है ना, तो इतना बड़ा ऑनर दिया इस चीज को कि कोई अल्लाह की खातिर उसके नाम की खातिर कत्ल कर दिया जाए। तो फरमाया उनको मुर्दा ना कहो, बल अहिया उन, बल्कि वो जिंदा है, वला किल्ला और, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी कि वो कैसे जिंदा है, कैसे जिंदा है। इनके बारे में भी हदीस में आता है, यानी वैसे तो आप ये देखिए ना, जितने लोग मर जाते हैं, तो मुसलमान का ईमान है कि मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत ना खात्मे का नाम नहीं है, ये तो एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में एंटर होने का नाम है। वो जिंदगी जिसमें जिस्म और रूह जुदा जुदा होते हैं, ये जिंदगी वो है जिसमें जिस्म और रूह एक साथ होते हैं। ये फर्क क्या है बस? ये दुनिया की जिंदगी कहलाती है, वो बरजख की जिंदगी कहलाती है। पर ऐसा नहीं है कि इंसान पैरिश हो जाए, खत्म हो जाए उसके, यानी अब कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा साथ है। पता चलता है कि क्या मुझे अच्छा लज्जत मिलती है, मजा आता है, लुत्फ होता है, या फिर सजा मिल रही है, पता चलता है, जिस्म और रूह दोनों को पता चलता है। तो फरमाया उनको मुर्दा ना करो कहो, अब वैसे तो वो फौत हो गए, कब्र में दफनाए गए, लेकिन ये ना कहो कि ये मुर्दा है, बल्कि वो, इसीलिए उनको हम शहीद कहते हैं, वो जिंदा है। वो कहाँ जिंदा है, किस जगह पे जिंदा है, वो तो कब्र के अंदर चले गए। उनकी जिंदगी इसलिए बताया गया, ये एक तो उनको ऑनर देने के लिए कहा गया कि वो जिंदगी है उनकी, आया है, जिंदा है। नंबर टू बात कि वैसे तो सारी रूहें जिंदा हैं अल्लाह के पास, कोई इल्लियीन में है, कोई सिजीन में है, ये नाम दोनों हमें कुराने पाक से मिलते हैं, इल्लियीन और सिजीन। बद रूहें सिजीन में पड़ी होती हैं, नेक रूहें इल्लियीन में रखी जाती हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र जो है वो जन्नत का बाग भी हो सकती है और जहन्नुम का गड़ा भी हो सकती है, दोनों में से एक होगी। तो इसका मतलब है कि उनको कुछ शऊर है ना, तो एक जिंदगी वो भी है, लेकिन वो जिंदगी डिफरेंट है यहाँ से, क्योंकि वो बरजखी जिंदगी है, उसको आप दुनिया की जिंदगी के साथ नहीं मैच कर सकते कि जिंदा का मतलब ये है कि वो कब्र में खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं जैसे हम ऊपर रह रहे हैं, वो बस जमीन के नीचे रह रहे हैं बस। ये नहीं है बात, बरसख और चीज है। अब उनका अल्लाह ताला जो ऑनर करता है ना, जो इकराम करता है, जो उनको इज्जत देता है, वो इस हदीस से, मुस्लिम की हदीस से पता चलती है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के कल्ब में, क्या होते हैं, ग्रीन कलर के बर्ड्स हैं जन्नत में, उनके दिलों के अंदर है, और जन्नत में जिस जगह चाहे चरती चुगती उड़ती फिरती हैं। इनकी रूहें जो होती हैं, जैसे इस वक्त रूह हमारी किस में है, ये एक मट्टी का जिस्म है,
بنا ہوا اس کے اندر ہماری روح ہے, اور اس وقت وہاں پہ کہاں ہوتی ہے, گرین برڈز کے اندر روحیں ہوتی ہیں, وہ اڑتی پھرتی ہیں, چرتی چکتی ہیں, پھر قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں. اور ان کے رب نے ایک دفعہ انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو, تو انہوں نے جواب دیا اللہ ہمیں تو نے وہ دیکھ رکھا جو کسی کو نہیں دیا, پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. وہ اتنی یعنی ہیپی ہوتے ہیں وہاں پہ, اتنے مزے کر رہے ہوتے. تو انہوں نے جب یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہی سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی پڑے گا, تو ہم کچھ نہ کچھ ہمیں کہنا ہی پڑے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, ہم تیرے راستے میں پھر جنگ کریں, پھر یہی دو, پھر تیرے پاس آئیں, پھر شہادت کا دگنا درجہ پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹ کے نہیں جا سکتا. لیکن اللہ نے ان کی باتیں ہم تک پہنچا دی. یہ دیکھو کہ کیسے ان کو شوق ہے, فرحین بما آتاہم اللہ ربی, وہ جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوا اس کے اوپر اتنے خوش ہیں وہاں پہ. یعنی ان کی ایک اور لائف وہاں پہ ہے, اسی لیے کہا گیا نا کہ آہیا, کچھ کی تو زندگی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ کبھی قیامت نہ آئے. وہ اتنے وہاں پہ تکلیف کے اندر ہوں گے, یعنی قبر کے عذاب کی جو باتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے اسے. مگر جو وہ باتیں آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے اللہ, یعنی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی ان کی یہ حالت ہے کہ وہ وہاں پہ کس طرح کے عذابوں کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ تو موت سے بھی بدتر چیز ہے جس کے اندر وہ ہوں گے. اور کچھ لوگ ہیں جن کی یہ زندگی ہے, انہوں نے زندگی ہے وہاں پہ جا کے اس دنیا سے زیادہ مزے. وہ کیا کبھی چاہیں گے کہ کبھی واپس آئیں؟ وہ نہیں چاہیں گے. ان کا تو صرف واپس آنے کا بھی کیا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم جائیں اور پھر تیرے راستے میں لڑیں, پھر اس کے بعد ایسے ہی آ جائیں. تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے دیا نا اس کے اوپر بہت وہاں پہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, سورہ آل عمران میں. اور وہ اتنے اس بات سے خوش ہیں کہ اس چیز پہ ان کے لیے جو کہ ان کے بعد ان سے ملنے والے ہیں, کہ ہمارے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے, وہ ہمارے سے آ کے ملیں گے, ان کے اوپر خوش ہیں, وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے. دیکھیں ان کی وہاں پہ کتنی پیاری مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو زندہ ہیں, ان کو مردہ بھی نہ کہو, یعنی اتنا ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اچھا, اب یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس غیب کی دنیا کا شعور ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا. اگر وہ حاصل ہو سکتا تو پھر یہاں پہ نہ کہا جاتا والا کہ اللہ تعالیٰ شعور, ہم نہیں سمجھ سکتے وہ پھر ایسے کیسے ہوتا ہے, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر وہ کیسے, ہم نہیں جان سکتے یہ باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی, وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ, یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ہر آسمان کے اوپر نبیوں سے ملے ہیں, ہم نہیں شعور رکھ سکتے. لیکن اس چیز کو لے کر نہ اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کوئی یہ کہنے لگتے ہیں وہ تو ایسے ہی زندہ ہے جیسے ہم یہاں پہ زندہ بیٹھے ہیں, وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں, اپنی بیویوں سے بھی ملتے ہیں, وہ ان کی وہاں پہ پورے تعلیم بھی دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں, پوری ان کی مجلس لگی ہوئی ہے. یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس سے بالکل ہی سمجھ سے باہر بات ہے کہ بھائی قبر کے اندر اگر وہ ایسے بیٹھے ہوئے تو آپ نے وہ قبر میں کیوں ڈالا ہوا ہے, پھر ان کھولو قبر کو, نکالو ان کو, اگر یہ ایسی زندگی. نادان لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ زندگی الگ ہے, وہ الگ زندگی ہے, یہ الگ زندگی ہے, وہ اس سے یعنی بالکل ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے, اور اس زندگی کو ہم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو مسئلہ بنا کے پھر اب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے ہی زندہ ہے, تو اس لحاظہ وہ ہماری دعائیں بھی سن رہے ہیں, وہ ہماری ساری باتیں بھی سن رہے ہیں, اب ہم کھڑے ہو کے یہ بول رہے ہیں, اب ہم جالیوں کے پاس جا کے ان کو پکار رہے ہیں تو وہ بس سن بھی رہے ہیں,
اور پتہ نہیں کیا کیا پھر عقیدے آگے بنا لیتے. جب شہید کی آپ نہیں سمجھ سکتے زندگی کو, تو انبیاء کی کہاں سے سمجھ سکتے؟ انبیاء کے تو رتبے مرتبے شہیدوں سے بھی بلند ہیں, بہت بلند ہیں. تو شہیدوں کے بارے میں یہ کہہ دیا گا, تو انبیاء کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سمجھ آ جائے گی زندگی؟ وہاں پہ برزخی زندگی ان کی کیسی ہے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے نہیں زندہ جیسے ہم ہیں, بلکہ وہ ایک الگ دنیا ہے. غیب کی یہ باتیں ہیں, ان کے اوپر جیسے اللہ نے بتا دیا ہم ایمان لے آئے, اس سے آگے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسی کے چھان بین میں لگ جائیں. جب جائیں گے اللہ ہمیں اچھے مقام دے تو دیکھ لینا پھر, ابھی یہاں پہ ہمارے عمل کو کیا فرق پڑ جائے گا اس سے کہ وہ کیا وہاں پہ کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, وہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. ہمیں بس پتا ہونا چاہیے اس کا, جتنا بتا دیا بس کافی. یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جو شہداء ہیں ان کی جسموں کو بھی دیکھیں مٹی نہیں کھاتی ہے, بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے. امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموح انصاری اور عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا. ان کی قبریں یعنی پانی کے قریب تھی, یہ دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے, یہ دونوں نا جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. تو ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے. جب ان کے جسموں کو قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسم ایسے تھے کہ جیسے کوئی ابھی فوت ہوا. ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پہ تھا, اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا تھا, اور ان کے ہاتھ کو ان کے زخم سے ہٹا کے چھوڑا گیا تو پھر وہ واپس زخم پہ چلا گیا. اور یہ جنگ احد میں اور یہ قبر کھودنے کے درمیان 46 ایئرز کا عرصہ تھا. یہ موتا امام مالک میں یہ لکھی بھی ہے بات, تو اسے پتا چلتا ہے اللہ کے ہاں کیسے مقام ان کو ملتے ہیں. ان کے جسموں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے پریزرو کرتا ہے اور روحوں کو کتنی پیاری مقام دیتا ہے. پھر آگے بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے, ہماری زندگی سے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے سب کی زندگی کے ساتھ, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور میں نے کیا بتایا, لا بھی تاکید کار نون مشدد بھی, یعنی دو تاکیدیں آ گئی کہ ضرور پر ضرور جس کو ہم کہتے ہیں نا شورلی, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بشئی ان, سات چیزوں کے. کن چیزوں کے؟ من الجوع, من الخوف, خوف میں سے, والجوع اور بھوک میں سے, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور نقصان سے مالوں کے, نفسوں کے اور ثمرات کے. کن تین چیزوں کے نقصانوں سے؟ مال, جانے اور پھل. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ آزمائش ضرور ہوگی, کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری آزمائش نہیں ہے. نہیں, ہر ایک انسان کی آزمائش کو اتنا زیادہ اس کو ایمفسائز کیا گیا, دو تاکیدیں لائی گئیں کہ لازمن یہ اللہ تعالی نے یعنی بات طے کر دی ہے کہ وہ آزمائے گا تمہیں. آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ آزمایا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ دیکھا جائے. دنیا میں بھی امتحان ہوتے ہیں نا, آزمائشیں امتحان کو کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ کوئی کتنے پانی میں ہے. کوئی آپ کا مثلا امتحان ہوتا ہے تو پتہ چلے کہ کوئی کتنا لائق ہے, کس کو کتنا آتا ہے, کس نے کتنا اچھا پڑھا ہوا ہے اور کس نے بالکل نہیں پڑھا ہوا, کسی کو بالکل نہیں سمجھ آئے. اس کے لیے امتحان لیا جاتا ہے نا. اللہ کے ہاں بھی امتحان اسی طرح. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت سٹارٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون, اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں, وہ آزمائے نہیں جائیں گے, وہ یہ سمجھتے ہیں. ہاں بتائیے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس کہیں گے ہم ایمان لے آئے, ہم مسلمان ہیں, وی آر مسلم, اسلام کے خانے میں یعنی کلک کریں گے. ریلیجن اسلام, तो इससे बस ठीक हो जाएगा, उनकी बातों को ही ऐसे मान लिया जाएगा। बातें करने को क्या है, बातों का तो ये हाल है, हमें तकरीर करने को कह दें फिर देखें हम कैसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। जान भी चली जाए तो ऐसे हो, हम अल्लाह के लिए ये कर सकते हैं, हमने सर पे कफन बांधे। आप कभी सुन ले तकरीरें, कभी आपने ये नाते सुनी है? इश्के रसूल के तो ऐसी ऐसी शायरी है कि बस ऐसा लगता है कि जैसे इनसे ज्यादा तो मोहब्बत किसी को हो ही नहीं सकती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्या है? तो जैसे हमने पिछली दफा भी बात की थी, अल्लाह ने बातें देखनी है हमारी, किसको बातें बड़ी अच्छी करनी आती है, बड़ी जबरदस्त शायरी, डायलॉग कितने बोलने आते हैं। आप मुझे बताएं, आपसे कोई मोहब्बत के डायलॉग बोले और उसके बाद उसको आपकी परवाह भी ना हो, तो आप क्या कहेंगे ऐसे डायलॉग? आपको कोई उसकी बात अच्छी लगेगी जो कहे हम ईमान वाले, हम ऐसे, हम तो अल्लाह की खातिर ये करेंगे, हम तो तन मन धन की बाजी लगा देंगे, बस अल्लाह एक हुक्म दे, देखा फिर मैं क्या प्रूव करूं। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होती तो मैंने तो पता नहीं क्या कर देना था, कहां से कहां मैंने निकल जाना था, साबिकून अव्वलून में से मैंने ही होना था। अल्लाह ताला कहता है तो तुम क्या सोचते हो हमने आजमाना नहीं तुम्हारी, सिर्फ बातें ही सुन के मान लेना? नहीं, लोगों ने ऐसे समझ रखा है। वलकद फतन्ना लदीना मिन कबलिहिम, हमने तो उनको भी आजमाया था जो इनसे पहले आए थे। फलयालमन्नल्लाहु लदीना सदकू वलयालमन्नल कादिबीन, ताकि अल्लाह ताला जान ले सच्चे कौन है और झूठे कौन है, झूठे कौन है। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है, मैं तो ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, ये प्रूफ करके दिखाओ ना, वाकई इश्के रसूल है तो प्रूफ करो, वाकई दीन के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो दिखाओ तो सही, साबित करो, सबूत के बगैर क्या है। तो ये तो अल्लाह ताला ने बता दिया, इसी के लिए आजमाइश रखी, क्योंकि देखें इम्तिहान ना जब तक आए, आप कहें मैं बड़ी लायक हूं मुझे सब आता है, जब इम्तिहान आएगा तो पता चलेगा क्या आता है, इम्तिहान के बगैर कैसे पता चलेगा। तो बातों से नहीं अल्लाह ताला ने मान लेना, अल्लाह आजमाएगा तुम्हें भी यही इन चीजों से, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, कोई इनमें से एक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इनमें से, यानी पूरे पूरे खौफ से नहीं, थोड़ा सा खौफ देके, मिन अल खौफ मिम तबईजिया भी हो सकता है कि बाज खौफ में से, बाज चीजों में से, बाज ये भी हो सकता है। क्या चीजें? खौफ, पहली चीज खौफ, कोई खौफ जो होती है ना, अस्तग़फिरुल्लाह, हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें खौफ ना अता करना, अल्लाह खौफ से हमें निजात देना, या अल्लाह ताला खौफ की हालात ना हमारे ऊपर कभी आए। कि जब खौफ होता है ना, तो कोई भी नेमतें जितनी आपके पास हो, आपके पास घर है, कुछ सब चीजें हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खौफ की जो नफ्सियात होती है इंसान को पागल कर देती है कि अभी कुछ हो जाना है, अभी आके हमें पकड़ लेंगे, अभी ये हो, ये इंसान को साइको कर देती है, जहनी मरीज बना देती है। आप देखें इस वक्त दुनिया में बाज जगहों के ऊपर इस कदर शदीद खौफ है, इतना ज्यादा खौफ है, मैंने चाइना की मिसाल आप देख लें, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। यानी मैंने सिर्फ थोड़ी सी बातें पढ़ी थी, मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकती जिस किस्म का टॉर्चर, और जैसे वो उनको री एजुकेशन कहते हैं कि हम इनको तो एजुकेट कर रहे हैं जी, इनको हम जरा ठीक कर रहे हैं, इनके जरा ख्यालात को दुरुस्त कर रहे हैं, वो जो दुरुस्ती कर रहे हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह कि मैं कितने दिन, मेरे चैन नहीं आ रहा था, मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही थी, इस कदर टॉर्चर की बातें लिखी नहीं थी, और ये यहाँ की मीडिया वगैरह ने रिपोर्ट्स दी नहीं। कोई ऐसी बातें नहीं कि कोई किसी ने व्हाट्सएप की वीडियो लगा दी हो या कुछ ऐसे, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है वहां की। आप ये देखें, ये जो खौफ की नफसियात होती है ना, इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह आज बाज लोग इस तरह के खौफ में रहते हैं, आए हमारी सेफ्टी का खौफ, खानदानों को कुछ ना हो जाए, मेरी चीजों को कुछ ना हो जाए, इस खौफ के अंदर। तो ये जो खौफ होता है अल्लाह इससे भी आजमाता है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में जो बेतहाशा खौफ का एक वक्त आया था, वो सूरह अहज़ाब में है, जंगे अहज़ाब का वक्त।
उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि ऐसे था, इतना खौफ था क्योंकि 12,000 का लश्कर लेके सारा अरब दरवाजे पे खड़ा हो गया आके। उधर बनू कुरैजा ने गद्दारी कर दी है, जो आपके हमसाई के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने तो घेरा डाल लिया है। बीच में खंदक का सिर्फ वो है रुकावट, उसके अलावा कोई नहीं रुकावट है कि वो आ जाए और खत्म कर दे। छोटी सी मदीना की बस्ती थी उस वक्त, क्या हालात थे वो सूरा में पढ़ के देखे, ये आता है कि जैसे कलेजे हलक में आ रहे थे, इतना खौफ था। और हिला दिए गए मुसलमान, वो था टाइम इम्तिहान का। उस वक्त मुनाफिकों ने कहना शुरू कर दिया, ये अल्लाह रसूल के वादे सारे झूठे थे, ये सब झूठ था, हमें तो पता चल गया, देख लो